with eight. Ready in?
Ready.
So we are following the Buddha in his experiences here at Budai.
So Budhagaya mein Buddha ke jo kuch anubhav hai, unhe hum dekh rahe hai.
And we saw him first of all under the Bodhi tree.
तो सर्वप्रथम हमने उनको बोधि वृक्ष के नीचे देखा।
You remember that it was there that he experienced liberation.
और आपको याद होगा कि यही वह जगह है जहाँ उन्होंने विमुक्ति का अनुभव लिया।
He saw the real nature of things.
उन्होंने चीजों का सत्य स्वरूप देखा।
Saw there was nothing you could cling to.
और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम पकड़कर रह सकते हैं।
Just let go.
उन्हें जाने दी
and experienced for a whole week the bliss of release.
और पूरे एक सप्ताह तक जो मुक्त हो गए उसका वे आनंद लेने लगे.
You blessed me in the sky. The Bodhi seed fell on my head. Then he moved up to the little hill there.
और फिर वो पड़ोस का जो टीला है वहाँ भी चलते गए.
And there he gazed at the Mahabodhi tree.
और फिर वहाँ से महाबोधि वृक्ष जो है उसके तरफ भी देखते रहे.
Just experiencing his deep gratitude for the tree having sheltered him.
और उस वृक्ष ने उनको जो छाया दी उसके लिए उनके मन में बहुत ही गहरा कृतज्ञता का भाव निर्माण हुआ.
And then he came down, walked up and down here.
और फिर वहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ आगे पीछे वे चलते रहे.
Just absorbing the experience that he'd had.
और जो भी उन्होंने अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव में वे अपने आप में गहरा बैठने दे रहे थे.
Deeply in contact with the liberation, the unfolding set of experiences that came from liberation.
और बहुत ही गहरे ढंग से विमुक्ति के वे संपर्क में थे और जो भी उस प्रकार के जो भाव निर्माण हो रहे थे स्वतंत्रता के उसको लेकर वे अपना अनुभव देख रहे थे.
And then he went over to the Ratnagar.
और उसके पश्चात वे रत्नागर के वहाँ तक गए.
And he experienced a very deep meditation.
और वहाँ बहुत ही गहरे ध्यान का अनुभव उन्होंने लिया.
In that meditation, he went to the heights and depths of what is possible.
और फिर उस अनुभव में बहुत ही गहराई में बहुत ही ऊंचाई तक उन्होंने देखा कि क्या संभव हो सकता है.
So you can see that to begin with, he's been exploring the experience that's happened to him.
और आप देख सकते हैं कि शुरू में जो कुछ उनके साथ हुआ उसका वे अनुभव लेने लगे.
So something new begins to take place.
और कुछ नई ऐसी बात वह घटित होने लगी.
He walks over there to just at the foot of the stairs coming down.
और फिर यहाँ से वहाँ तक जहाँ से वो सीढ़ियाँ बिल्कुल नीचे आने के लिए जा हैं वहाँ तक पे चलकर गए.
And there was a great banyan tree.
और वह एक बड़ा बरगद का पेड़ है.
Called the Ajapala tree.
और उसको अजपाला वृक्ष कहते हैं.
Because it was a tree where a goat herd would stay.
और वहाँ जो चरवाहा है वो वहाँ रुकता था.
So the Buddha went and sat underneath that tree.
और फिर उस वृक्ष के नीचे जाकर बुद्धा बैठ गए.
What's been happening up until now is that experiences have been unfolding as it were inside him.
तो अभी तक क्या हो रहा है कि उनके भीतर जो अंतर्दृष्टि निर्माण हुई तो अंतर्दृष्टि अधिक मतलब एक प्रकार से निर्माण होने लगी.
But now he begins to reflect on the world around him.
और फिर उन्होंने उनके आसपास जो जगत है उसके ऊपर चिंतन करना शुरू किया.
And he asked a very important question of himself.
और स्वयं से उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक सवाल पूछा.
He says, "Well, I've experienced this liberation."
तो मैं ये मुक्ति का अनुभव ले रहा हूँ.
So, what can I look up to?
और फिर मैं किस चीज की तरफ मैं देख सकता हूँ?
I've become, so to speak, the highest that a human being can be.
तो मानव जो सबसे ऊंची जगह जा सकता है, तो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ.
What can I look to?
अब मैं किसके तरफ देखूँ?
And he said, "There's no human being I can look to."
तो कोई ऐसा मानव नहीं है जिसकी और मैं देख सकता हूँ.
I'm supreme in ethics.
तो शील में मैं बहुत ही ऊंचा हूँ.
I'm supreme in meditation.
मैं ध्यान में बहुत ही ऊंचाई तक गया हूँ.
I'm supreme in wisdom.
मेरी प्रज्ञा जो है बहुत ऊंचाई तक है.
There's nobody I can look to.
तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी तरफ मैं देख सकता हूँ.
There's no God I can look to.
कोई ऐसा ईश्वर देव नहीं है जिसकी तरफ मैं देख सकता हूँ.
And he said, if you don't look up to something, in a way it's a source of suffering.
अगर कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप ऐसा ऊपर देख सकते हैं कहीं, तो एक प्रकार से ये दुखदायी ऐसी अवस्था होती है.
If you don't have something to revere, to worship,
तो कोई ऐसी चीज जिसकी आप पूजा कर सकते हैं, जिसका आप आदर कर सकते हो.
If you don't rely on something, it's a source of suffering.
अगर कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पर आप निर्भर रह सकते हैं, तो एक प्रकार से बड़ा ये दुखदायी अनुभव होता है.
But nobody he could rely on.
लेकिन कोई ऐसा उनको दिखाई नहीं दिया जिसके ऊपर इस प्रकार से वो निर्भर रह सकते हैं.
So he said, the only thing there is that I can rely on is the Dhamma.
और फिर उन्होंने देखा कि एक ही चीज है जिसके ऊपर वो निर्भर रह सकते हैं, और वह है धम्म.
So let me live relying on the Dhamma.
तो इसी प्रकार से भी मैं धम्म के ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन जीऊंगा.
Now there's quite a lot that's very very interesting in this.
तो इसमें बहुत ही रोचक ऐसी बड़ी बात आपको दिखाई देगी.
Very significant for us.
हमारे लिए ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी है.
First of all, the Buddha even feels the need to revere.
तो बुद्ध को भी इस बात की जरूरत महसूस होती है कि किसी का वो आदर करे.
How much more do we need that?
तो हमें कितना मतलब इसकी जरूरत है हम सोच सकते हैं.
If we don't look up to something, if we don't feel there's something we can take refuge in, it's a very unhappy life.
अगर कोई चीज ऐसी हमारे पास नहीं दिखाई देती है या जहां हमारा शरण ले सकते हैं, तो हमारे लिए कितना दुखदायी जीवन हो जाएगा.
And this is the life that many, many people live today.
और आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसी प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं.
That there's nothing that they can respect.
कोई ऐसी चीज उनके लिए नहीं होती है जिसके प्रति उनके मन में आदर हो.
Nothing they can rely on.
कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पर वो निर्भर रह सके.
And that leaves you just alone.
और इससे बिल्कुल आप अकेले रह जाते हैं.
And well, that is a source of suffering.
और ये बिल्कुल मतलब एक दुख का एक स्रोत बन जाता है.
But we have to rely on something that's reliable.
लेकिन ऐसे ही चीज पर हमें निर्भर होना चाहिए जो निर्भर होने के लायक है.
Most people you can't rely on completely.
अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पर पूरी तरह से हम भरोसा नहीं कर सकते, निर्भर नहीं रह सकते.
For a start, well, they may die.
अभी अगर शुरुआत किए तो हम देख सकते हैं उनकी मृत्यु हो सकती है.
But for another, they're not enlightened, so they don't see the truth of things.
और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं की है, इसलिए जो चीजों को है जैसा है वैसा देख नहीं सकते.
We can't rely on money, we can't rely on job, we can't rely on anything.
तो हम पैसे के ऊपर, हमारे नौकरी के ऊपर और किसी अन्य चीज के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते.
So we need to find something that's really reliable.
तो सही में ऐसी कोई चीज हमें चाहिए जिसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं.
We can't rely on God.
हम देव ईश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते.
We might be able to rely on him if we could find him.
अगर हम उनको ढूंढ सकते हैं तो फिर शायद हम उसके ऊपर निर्भर रह सकते हैं.
But well, nobody's found him.
लेकिन अभी तक किसी को तो वो मिला नहीं.
So you can't rely on just an idea.
तो एक कोई कल्पना मात्र है और उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते.
So we need something we can really rely on.
तो ऐसी कोई चीज हमें चाहिए जिस पर सही में हम निर्भर रह सकते हैं.
Buddha said what we can rely on is the Dhamma.
और बुद्ध ये कहते हैं कि जिस बात पर हम निर्भर रह सकते हैं वह बात जो है वो धम्म है. सही में धम्म ही है जिसके ऊपर आप निर्भर रह सकते हैं.
So here Dhamma doesn't just mean teachings.
धम्म का यह अर्थ केवल शिक्षा इतना ही मात्र नहीं होता है.
It doesn't mean the sutras.
जो सूत्र है उसका इतना ही उसका अर्थ नहीं होता है.
The Dhamma means the principle of progress.
धम्म का अर्थ ऐसा होता है ऐसे तत्व जो तत्व मतलब हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारी प्रगति होती है.
It means the spiral path.
इसका अर्थ ऐसा होता है कि ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग.
You remember yesterday I said that our minds are dominated by karma.
तो मैंने कल कहा था कि हमारा जो मन है वो कर्म से बहुत ही प्रभावित है.
The Buddha's mind works according to Dhamma.
और बुद्ध का मन जो है वो धम्म के अनुसार कार्य करता है.
So the Buddha realized he could rely on Dhamma.
तो बुद्ध जो है धम्म के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं.
If you put your confidence in the Dhamma, it will lead you forward.
अगर धम्म पर आप पूरा विश्वास डालते हैं तो धम्म आपको आगे बढ़ाएगा.
That's what we need to do.
और यही हमें करने की जरूरत है.
We need to rely on the Dhamma.
हमें धम्म के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है.
We need to go for refuge to the Dhamma.
धम्म को हमें शरण जाने की जरूरत है.
It's the Dhamma that will lead us on to freedom.
धम्म ही है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा.
And when we achieve freedom, it's the Dhamma that will unfold more and more richly.
और जब हम इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये धम्म ही है जो अधिक अधिक हमारे लिए विकसित होते जाएगा, खिलते जाएगा.
So yes, this was the first experience that the Buddha had.
तो ये पहला अनुभव है जो बुद्ध ने लिया.
He realized no human being could be relied upon.
फिर उन्हें ये दिखाई दिया कि कोई ऐसा मानव नहीं है जिसके ऊपर वे निर्भर रह सकते हैं.
The only thing that you could worship and rely on is the Dhamma.
तो एक ही चीज है जिसकी पूजा की जा सकती है, जिस पर निर्भर रह सकते हैं, वह धम्म है.
So that was his first experience there under that tree.
तो उस वृक्ष के नीचे यह उनका पहला अनुभव था.
But the second experience was very interesting.
लेकिन दूसरा अनुभव उनका बड़ा रोचक था.
You think for 5 weeks or 4.5 weeks, he's not seen another person.
अभी देखिए 4.5 मतलब सप्ताह तक किसी दूसरे व्यक्ति से वो नहीं मिले.
He's been completely on his own here.
वो बिल्कुल अकेले यहाँ पर में थे.
But now he meets someone.
लेकिन अभी किसी से उनकी मुलाकात होती है.
He's just sitting there under the tree.
तो वहाँ वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए हैं.
And a figure comes towards him.
और एक व्यक्ति उनकी तरफ चला आ रहा है.
And it's a Brahmin.
और ये ब्राह्मण है.
And his name is Puhunkajati.
और इनका नाम जो है
Puhunkajati.
Puhunkajati.
And this Brahmin is very proud of being a Brahmin.
और ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने का उसको बड़ा गर्व है.
So you can see the scene.
तो आप उस दृश्य को देख सकते हैं.
The Buddha sitting there very peacefully, very quietly.
बुद्ध बड़े शांति से स्थिर वहाँ बैठे हुए हैं.
Glowing with his realization.
और उनको जो अनुभूति प्राप्त हुई उसका प्रकाश उनमें दिखाई दे रहा है.
And then you see this Brahmin strutting through the jungle.
और फिर इस जंगल से ये ब्राह्मण जो है इस प्रकार से बड़े ऐट के साथ चलते हुए आ रहा है.
Now I need to give you a bit of background.
अब इसकी जो पार्श्वभूमि मैं पहले बताना चाहूंगा.
I don't need to tell you anything about the caste system, of course.
अर्थात जाति व्यवस्था के बारे में अभी मैं कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं.
But what you may not realize is at the time of the Buddha, the caste system wasn't very well developed in this area.
तो शायद आपको ये बात उतनी ज्ञात नहीं होगी, लेकिन बुद्ध के समय में इस क्षेत्र में जाति व्यवस्था उतनी अधिक ज्यादा विकसित नहीं हुई.
In the Kurukshetra, that is to the northwest of Delhi, caste was very well developed.
लेकिन कुरुक्षेत्र जो था, जहाँ हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो हिस्सा है, वहाँ जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा मतलब विकसित हो गई.
The whole social system of the Vedas was fully in force.
और वेद के जो भी सामाजिक मतलब पद्धतियाँ है वो पूरी लोगों के ऊपर थोपी गई थी.
But in this area, it hadn't really developed very strongly yet.
लेकिन इस क्षेत्र में उस समय तक उतना ज्यादा इसका प्रबल प्रभाव नहीं था.
But it was beginning to.
लेकिन उसकी शुरुआत हो रही थी.
You'd got the beginnings of big kingdoms.
तो एक प्रकार से जो राज्य है राजा के वो निर्माण हो रहे थे.
Well, we know, of course, of the kingdom of Magadha and the kingdom of Kosala.
तो मगध राज्य, कौशल राज्य, इसके बारे में हम जानते हैं.
We know Bimbisara and Prasenjit and so on.
प्रसन्नजीत, बिंबिसारा और ऐसे अन्य राज्यों को हम जानते हैं.
They were beginning to conquer larger and larger territory.
और अधिक अधिक प्रदेश जो है उसको वो विजय प्राप्त कर रहे थे, जीत रहे थे.
And as they began to conquer, well, they needed some support.
और जैसे जैसे वो जीतते जा रहे थे तो उनको किसी प्रकार की एक मदद की जरूरत थी.
And the Brahmin said that if you do our sacred rites, your kingdom will prosper.
और फिर ब्राह्मण ने कहा कि हमारे ये जो पवित्र विधि अगर आपने किया तो आपका जो राज्य है उसमें काफी मतलब समृद्धि आएंगी.
If you give us land, villages, money, we will make your land prosperous.
अगर आप हमको जमीन देते हैं, अगर कुछ संपत्ति देते हैं, तो हम आपका जो जमीन है, आपका जो राज्य है, उसको अधिक मतलब समृद्ध बनाएंगे.
So you got the Kshatriyas and the Brahmins began to work together to dominate the whole area.
और फिर आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इकट्ठा काम करने लगे.
So the Brahmins were saying the best person is somebody who is born into a Brahmin family.
और फिर ब्राह्मण ये कहने लगे कि ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है वही सर्वश्रेष्ठ है.
And this was gaining ground at that time.
और उस समय फिर इस बात ये बात जोर पकड़ने लगी.
So this Brahmin Huhunkajati walks up to where the Buddha is sitting.
और फिर ये जो ब्राह्मण है Huhunkajati जहाँ बुद्ध बैठे थे वहाँ तक चलने लगे.
And he just asked him a question.
और फिर वहाँ जाकर उन्होंने उनसे सवाल पूछा.
Just straight out, he asked him a question.
बिल्कुल सीधा उन्होंने उनको एक प्रश्न पूछा.
Well, I've written down what it says in the suttas.
और सूत्र में क्या लिखा है वो मैंने लिख कर लाया है.
He said, "What makes you a Brahmin?"
उन्होंने पूछा कि आपको ब्राह्मण कौन सी चीज बनाती है.
What does being a Brahmin consist in?
ब्राह्मण का मतलब उसमें क्या होता है.
Well, you know what he thinks.
अभी आप तो जानते हैं कि ब्राह्मण क्या विचार करता है.
He thinks that it's being born into a family of Brahmins.
तो वे ये सोचते हैं कि ब्राह्मण परिवार में वे पैदा हो गए.
It's being twice born.
हाँ, वो दो बार पैदा हुए कि द्विज है.
It's wearing the sacred thread.
और वो जो जनेऊ है वो उन्होंने धारण किया है.
So he's challenging the Buddha.
तो वो बुद्ध को वहाँ चुनौती दे रहे हैं.
Because the Buddha is sitting there as a spiritual man.
तो बुद्ध वहाँ एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में बैठे हुए हैं.
So the Brahmin is challenged by that.
और फिर जो ब्राह्मण है उसको भी इस बात से चुनौती मिली.
And so the Buddha challenges him.
और फिर बुद्ध ने भी ब्राह्मण को चुनौती दी.
The Brahmin asks him, "What makes a Brahmin?"
और फिर ब्राह्मण जो है उसको पूछा गया कि किस बात से ब्राह्मण बनता है.
So the Buddha twists his question.
लेकिन बुद्ध ने उनके प्रश्नों को थोड़ा मतलब एक प्रकार से घुमा दिया.
What he means by Brahmin is somebody who is born a Brahmin.
तो उनका अर्थ ऐसा था कि जो ब्राह्मण के रूप में पैदा होता है वही ब्राह्मण है.
But the Buddha sees Brahmin as the ideal person.
लेकिन बुद्ध ब्राह्मण यानी एक आदर्श पुरुष है, व्यक्ति है, ऐसा देख रहे हैं.
And he said, "You can't be born an ideal person."
तो वे कहने लगे कि आदर्श व्यक्ति के रूप में आप पैदा नहीं हो सकते.
You have to become the ideal person.
आदर्श व्यक्ति आपको बनना पड़ता है.
He says, "A Brahmin, in his understanding, in the Buddha's understanding, is somebody who's left behind evil."
तो बुद्ध के अनुसार ब्राह्मण वो हो सकता है जो भी मतलब पाप कर्म है, जो भी अकुशल है, जो उसने छोड़ दिया हो.
Left behind all unskillful action.
तो जो भी अकुशल कर्म है जो उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिए.
It doesn't matter which caste you come from.
अब ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि किस जाति से आप आते हैं.
If you've left behind all evil, then you're a Brahmin.
अगर सारी बुराई आपने अगर छोड़ दिए तो फिर आप ब्राह्मण हो गए.
If you don't have any pride, conceit.
अगर कोई अहंकार आप में नहीं है तो एक प्रकार से तब आप ब्राह्मण हो जाएंगे.
Because of course this Huhunkajati is very full of himself, very conceited.
अर्थात ये Huhunkajati जो है बहुत ही अहंकार से मतलब भरा हुआ है.
So the Buddha is saying, if you've left behind that sort of pride and conceit, arrogance, then you're a Brahmin.
अगर इस प्रकार का जो अहंकार है, उद्धतपना है, अगर वो छोड़ देते हैं आप, तो फिर आप ब्राह्मण हैं.
If you've left behind all kleshas,
तो जो क्लेश है वो क्लेश अगर आपने छोड़ दिए तब फिर ब्राह्मण.
So what is a klesha?
फिर क्लेश क्या है?
Well, kleshas are unskillful mental states.
क्लेश यानी हमारे अकुशल मनो अवस्था.
Hatred, greed, ignorance.
हाँ, द्वेष है, लोभ है, अज्ञान है.
Pride.
हाँ, अहंकार है.
Envy.
हाँ, हमारी ईर्ष्या है.
Ignorance.
हाँ, अज्ञान मोह है.
Lack of awareness.
हाँ, हमारे जागृत का अभाव है.
So if you've left those all behind, then you're a Brahmin.
अगर ये सारी चीजें आपने छोड़ दी है तो फिर आप ब्राह्मण हैं.
Well, you can imagine Huhunkajati's come very full of himself.
तो आप कल्पना कर सकते हैं Huhunkajati पूरा मतलब ऐसा भरे हुए आए हैं वहाँ.
Like a big balloon full of air.
तो जैसे बड़ा एक गुब्बारा है जो हवा भरकर वहाँ है.
The Buddha has put a pin in his balloon.
बुद्ध जो है वो गुब्बारे में अभी पीन लगा रहे
हैं
और फिर वो हवा ऐसी उनकी बाहर निकल रही है.
She says, a Brahmin is somebody who's self-controlled.
तो ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति है जो उसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण होता
है. Hunkajash is not in control of himself. He's under the power of his idea of what a Brahmin is.
तो हुंक जाति जो है वो अपने नियंत्रण में नहीं है. वो ब्राह्मण करके जो उसकी जो जाति है उसमें वो चिपटा हुआ है.
He's dominated by his arrogance.
हाँ, उनका जो उद्धतपना है उससे वो बहुत ही मतलब प्रभावित है.
Dominated by his greed.
हाँ, लोभ के प्रभाव में है.
So yes, then the Buddha says a Brahmin is somebody who's got real knowledge.
तो ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति है जिसमें सही में ज्ञान है.
Real knowledge.
सत्य का ज्ञान.
Not just how to do the mantras or the sacred ceremonies, the yajñas and so on.
तो केवल मंत्र पठन करना, यज्ञ करना और पवित्र कुछ विधि करना इतना ही नहीं.
Real knowledge about what's important.
तो जो सही में महत्वपूर्ण है उसका सही ज्ञान.
Knowledge about the way this life is.
तो ये जीवन जिस प्रकार से है उसका ज्ञान होना.
The way to freedom.
हाँ, मुक्ति का ज्ञान होना.
That's a Brahmin. Somebody knows that.
तो ये ब्राह्मण होगा जिसको ये सब चीजें मालूम होगी.
Somebody who's led a good, pure life.
ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शुद्ध पवित्र जीवन अपना यापन कर रहा है.
The word that's used is brahmacharya.
हाँ, यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो ब्रह्मचर्य है.
Brahmacharya usually means celibacy.
ब्रह्मचर्य का अर्थ ऐसा होता है कि मतलब ब्रह्मचर्य का आचरण करना.
ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य. But you've got this word Brahma. You've got this word Brahma.
तो ये शब्द हमारे पास है ब्रह्मा.
But Brahma here doesn't mean the god.
ब्रह्मा का अर्थ यहाँ कोई ईश्वर नहीं.
The original meaning of Brahma is expanded, infinite.
तो ब्रह्मा का जो मूल अर्थ है वो जो बहुत ही विस्तारित है, बहुत ही अनंत है.
So it means a life that is without limits.
तो जैसे मानो ऐसा प्रकाश है कोई मतलब मर्यादा नहीं.
So a Brahmin is somebody who lives the Brahma life.
तो ब्राह्मण है ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म का जीवन जीता हो.
But Hunka Jati, he wants land, he wants power.
लेकिन Hunka Jati जो है उसको भूमि चाहिए, उसको सत्ता चाहिए.
His mind is very limited.
और उसका मन बड़ा मर्यादित है.
So he's not living the Brahma life. He's not a Brahmin.
तो जो ब्रह्म जीवन नहीं अगर जीता है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता.
So this is what the Buddha, he tries to redefine Brahmin.
और फिर उन्होंने ब्राह्मण की नई प्रकार से व्याख्या करना शुरू किया.
And all the way through his teaching career, he tried to give a new meaning to Brahmin.
और उनके पूरी शिक्षा में हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण जो शब्द है उसको पूरी नई तरह से उन्होंने एक व्याख्या दी.
We know in the end he wasn't successful.
हम जानते हैं कि अंततः वे सफल नहीं हुए.
But what is really significant about this meeting is that he's challenging the existing social order.
तो ये जो उनकी मुलाकात हुई इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात ये नजर आ रही है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है बुद्ध ने उसको चुनौती दी.
The Buddha Dhamma always challenges the social order.
और बुद्ध धर्म जो है जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसको हरदम वो चुनौती देता है.
It challenges the social order if it does not reflect genuine moral and spiritual qualities.
तो ऐसी समाज व्यवस्था जहाँ सही में जो भी नैतिक या जो भी सदाचार है उसको अगर वो महत्व देता नहीं तो उसको चुनौती करता है.
Here it challenges the caste system.
और यहाँ उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी.
In Hungary it challenges the exclusion of gypsy people.
और हंगेरी में जो जिप्सी लोग हैं उनको बाहर रखा गया उसको वो चुनौती देता.
In England it challenges racism.
और इंग्लैंड में जो वंशवाद है इसको ये चुनौती देता है.
Everywhere all over the world there are forms of social oppression and hierarchy.
और पूरे दुनिया में हम देखते हैं किस प्रकार का एक सामाजिक शोषण है, एक सामाजिक एक प्रकार की मतलब क्रमिकता है.
In Tibet it challenges the suppression of freedom and cultural freedom.
और तिब्बत में भी वहाँ जो इस प्रकार के उनका शोषण और दमन हो रहा है उसको वो चुनौती देता है.
The Dhamma always challenges oppressive social systems.
तो धम्म जो है ये जो भी दमन करने वाली जो व्यवस्था होती है उसको चुनौती देता है.
That started here.
और इस बात की शुरुआत जो है वो यहाँ हुई है.
The first person the Buddha met, he challenged the system that he brought with him.
तो पहले व्यक्ति से बुद्ध मिले तो उन्होंने जिस व्यवस्था को लाया था पहली बार उन्होंने उनको चुनौती दी.
So let nobody ever argue that Buddhism has nothing to do with this sort of challenge.
तो अभी हम किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुद्ध जो इस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था को चुनौती नहीं देते.
The first person the Buddha met, he challenged the system that he brought with him.
तो पहले व्यक्ति को बुद्ध मिले और अपने साथ उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था लाई थी उसको बुद्ध ने चुनौती दी.
And well, this is something that we are very aware of.
और ये कैसी बात है जिसके बारे में हम सभी लोग बड़े सजग हैं.
You could say that here on that spot the Buddha launched the Dhamma revolution.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ बुद्ध ने उस जगह से एक धम्म चक्र परिवर्तन शुरू किया.
He said, "Don't accept this system of caste."
उन्होंने कहा ये जाति व्यवस्था जो है इसको मत स्वीकारिए.
Don't judge people by their birth.
लोगों को उनके जन्म से मत उनका मूल्यांकन कीजिए.
Don't judge them by their skin color.
उनके त्वचा का कौन सा रंग है उससे उनको मत जानिए.
Don't even judge them by their education.
उनके पास कौन सी शिक्षा है उससे भी उनका मतलब मूल्य मत नापिए.
Don't judge them by whether they're women or men.
अभी वो स्त्री है या पुरुष है उससे उनका मूल्यांकन मत कीजिए.
Don't judge them by the amount of money they have.
उनके पास कितना पैसा है इस बात पर उनका मूल्यांकन मत कीजिए.
Don't judge them by which nation they come from.
कौन से राष्ट्र से वे आते हैं इस बात से उनका मूल्यांकन मत कीजिए.
Judge them by their moral qualities.
उनमें नैतिक कौन से गुण है उसके आधार पर आप उनका मूल्यांकन कीजिए.
Judge them by the quality of their minds.
उनके मन का कैसा गुण है, सद्गुण है, उसके ऊपर आप उनका मूल्यांकन कीजिए.
That's what the Buddha said here on this spot.
और इसी जगह पर बुद्ध ने इसी बात को कहा.
And yes, he tried to revalue the term Brahmin, give it a new value.
तो ब्राह्मण ये जो शब्द है इसको एक नया मूल्य जो है उन्होंने देने का प्रयास किया.
Unfortunately, he was not successful.
अभी दुर्भाग्यवश वे कोई सफल नहीं रहे.
Because he launched a revolution.
तो उन्होंने क्रांति की शुरुआत की.
But there was a counter revolution.
लेकिन प्रति क्रांति भी हो गई.
We've seen that because even the Bodhi tree was cut down as part of that.
तो प्रति क्रांति का एक हिस्सा के रूप में बोधि वृक्ष को भी वहाँ काटा गया था.
This place just disappeared under the ground.
और ये जो जगह है जमीन के नीचे इसको दबा दिया गया.
When the British general General Cunningham rediscovered Bodh Gaya, it was just the Sikara sticking up.
हाँ, और जो जनरल कनिंघम है जब ये यहाँ पर भी जगह को उन्होंने खोज निकाला उसका जो शिखर है केवल उतना ही दिखाई दे रहा था.
You can see where the level is all around us.
तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्तर है जमीन का जो है हमारे इर्द गिर्द किस प्रकार से नजर आ रहा है.
So you can imagine that the ground level was right up here.
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जमीन का जो स्तर है ये इतने ऊपर तक था.
You can see pictures, drawings of what it was like when he rediscovered it.
तो आप सोच सकते हैं कि जब उनको फिर से ये खोज निकाला उनको किस प्रकार से यह महसूस हुआ होगा.
The counter revolution was so effective that even Bodh Gaya disappeared.
प्रति क्रांति इतनी परिणामकारक थी कि बुद्ध गया को भी उन्होंने एक प्रकार से ढक दिया.
And everybody forgot what happened here.
और यहाँ जो कुछ हुआ था सब लोग उसको भूल गए.
That was the counter revolution that turned things back.
तो ये प्रति क्रांति है जो चीजों को बिल्कुल उल्टा कर देती है, पीछे लाती है.
But then in 1956, Dr. Babasaheb Ambedkar relaunched the Dhamma revolution.
लेकिन फिर 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने फिर से ये जो धम्म क्रांति है इसकी फिर से नई शुरुआत की.
Well, of course, it started earlier.
अर्थात उसके पहले ही इसकी शुरुआत हो गई.
Even the constitution of India is a counter revolution.
तो एक प्रकार से इस देश की जो मतलब संविधान है ये भी एक प्रकार का प्रतिक्रांति.
This republic is founded on the principles of liberty, equality, fraternity and justice.
तो ये जो भी मतलब हमारा रिपब्लिक है, लोकशाही है, तो इसका जो आधार है स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय है.
But Nagpur in 1956, October the 14th, 1956, he relaunched that Dhamma revolution in the deepest and the strongest possible way.
तो 14 अक्टूबर 1956 को जितने जबरदस्त, जितने मजबूती से ये धम्म क्रांति शुरू हो सकती है वो धम्म क्रांति बाबा साहब ने शुरू की.
And he saw himself as doing the Buddha's work.
और उन्होंने स्वयं को देखा कि वे बुद्ध का कार्य कर रहे हैं.
What he did was what the Buddha did here.
तो जो कुछ उन्होंने किया वही बात बुद्ध ने यहाँ की.
And well, we ourselves are in that that process.
और हम सभी लोग इसी प्रक्रिया में शामिल हैं.
We are part of that process of trying to bring a really just society back to India.
तो हम सभी लोग इसी प्रक्रिया में हैं. हम फिर से ये जो न्याय समाज है भारत में निर्माण हो उसमें हम शामिल हैं.
A really just society to Hungary.
हाँ, और एक न्याय समाज हंगेरी में निर्माण हो इसकी शुरुआत है.
A really just society to Britain.
हाँ, ब्रिटेन में एक न्याय समाज हो इसकी शुरुआत है.
A really just society to Tibet.
हाँ, तिब्बत में एक न्याय समाज हो इसकी ये शुरुआत है.
Anywhere, all over the world, we want to see a new just society.
तो पूरे जगत में हम एक नया न्याय समाज देखना चाहते हैं.
And this is a fulfillment of the Buddha's words here.
और बुद्ध के जो कुछ ये शब्द है उससे इसका महत्व हम देख सकते हैं.
What really matters are moral qualities, spiritual qualities.
तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नैतिक गुण कौन से है, आध्यात्मिक गुण कौन से है.
This message had never been heard before.
और ये संदेश इसके पहले किसी ने दिया नहीं था.
And those words still echo from this place.
और ये जो शब्द है इसका प्रतिध्वनि आज भी यहाँ सुनाई देता है.
So we should always remember this place as well as the Bodhi tree.
तो बोधि वृक्ष के समान ही इस जगह को भी हमने याद रखना चाहिए.
One day there will be a statue of Baba Sahib there.
और एक दिन शायद बाबा साहब का जो पुतला है वहाँ होगा.
Besides that place.
हाँ, वो जगह के बिल्कुल पीछे रहेगा.
Because he was the one who relaunched the Dhamma revolution.
क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने फिर से ये धम्म क्रांति की शुरुआत की.
But it was the Buddha's Dhamma revolution.
ये बुद्ध की धम्म क्रांति.
Which Baba Sahib saw so clearly.
और बाबा साहब ने इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा.
And he had the courage and the confidence to relaunch it.
और बाबा साहब में ये साहस था, आत्मविश्वास था कि इसको पुनर् निर्माण करें, इसको फिर से निर्माण करें.
So this fifth day, this fifth week is a very significant one.
तो ये पांचवा सप्ताह जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है.
And we should be well aware of this.
हमने इसको बहुत भली भांति जानना चाहिए, इसके प्रति जागरूकता रखनी चाहिए.
It's something that even amongst Buddhists in India we still need to go further with.
और भारत में जो बौद्ध है तो इस बात को लेकर हमें और भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए.
We need to get rid of all mental barriers between people.
तो लोगों के बीच हमारे जो भी मानसिक ऐसी दूरियां है वो सारी दूरियां हमने समाप्त करनी चाहिए.
We need to judge people by their moral quality.
तो लोगों का जो मूल्यांकन है उनमें नैतिक गुण कैसे है उसके आधार पर हमने करना चाहिए.
And, yes, not worry about their birth.
तो कहाँ वो जन्म लेते हैं इसके बारे में हमने चिंता नहीं करनी.
So yes, this fifth week was one where the Buddha was beginning to encounter the world.
तो पांचवा सप्ताह जो है वहाँ अभी जगत के साथ बुद्ध जो है उनका सामना हो रहा है, जगत के साथ वो मिल रहे हैं.
He was beginning to develop, if you like, his approach.
तो आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं कि बुद्ध का एक प्रकार का दृष्टिकोण जो है वह भी आगे बढ़ रहा है.
His realization was sort of personal, if you like.
तो उनकी जो अनुभूति है बहुत ही व्यक्तिगत है ऐसा हम देख सकते हैं.
But it had implications for the entire world.
लेकिन सारे जगत के ऊपर इसका असर होने वाला.
And he's slowly discovering what it means for the whole world.
और फिर धीरे धीरे उनके ये ध्यान में आ रहा था कि पूरे जगत के लिए इसका क्या अर्थ है.
I don't think I've got much more to say.
मुझे लगता है अभी अधिक कुछ बताने के लिए मेरे पास नहीं है.
We just need to bear in mind the full depth of the Buddha's realization.
तो बुद्ध की जो कुछ अनुभूति है उसको पूरे गहराई से अभी अपने दिमाग में रखना है.
Somebody like the Buddha is always going to be a challenge.
बुद्ध ऐसे है कि जो हर वक्त हमें चुनौती देते हैं.
But just to be the Buddha is a challenge to other people.
केवल बुद्ध का वह होना ही औरों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है.
The Buddha doesn't accept things.
और बुद्ध जो है हर चीज को ऐसा स्वीकार नहीं कर लेते.
The Buddha, as he walks, as it were, turns things upside down.
बुद्ध जब चलने लगते हैं तो मानो जैसे चीजें जो है उलट पुलट होने लगती है.
They can't stay the same.
वो वैसे ही नहीं रहती.
They have to change.
उन्हें बदलना पड़ता है.
And that's what we're trying to do.
और हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं.
We're trying to come close to the Buddha.
हम बुद्ध के करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं.
But the Buddha is going to turn us upside down.
तो बुद्ध भी बिल्कुल अभी हमें बिल्कुल ऐसा उल्टा करने वाले.
He's going to turn us inside out.
हमारा जो अंतर है, जो मन है, वो उसको बिल्कुल बाहर करेंगे.
You could even say in a way that the Buddha is going to destroy us.
एक प्रकार से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बुद्ध हमें अभी बिल्कुल नष्ट कर डालेंगे.
But what will be left will be something so much better.
लेकिन जो बचेगा बाद में वो उससे बहुत ही बेहतर होगा.
The Buddha is like a very powerful current of energy.
आप ऐसा भी देख सकते हैं कि बुद्ध एक ऐसा बहुत ही जबरदस्त विद्युत प्रवाह के रूप में आप देख सकते हैं.
And to be in contact with that is to be shaken.
और जब उसका स्पर्श होता है तो जोर से एक धक्का हमें महसूस होता है.
You can see that with that proud Brahmin Bhuhunka Jati.
और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा जो अहंकारी हूंक जाति ब्राह्मण है उसके साथ क्या हुआ.
When he encountered the Buddha, he wasn't expecting what he got.
और जब बुद्ध का उनका सामना हुआ तो वो अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वो क्या उनको मिलेगा.
He probably thought that in the end the Buddha was going to say, you know, bow at his feet and take darshan.
शायद वो सोच रहा होगा कि अंततः क्या होगा कि बुद्ध उनके सामने झुकेंगे, उनका दर्शन लेंगे.
But he met something so much more powerful, so much stronger.
लेकिन उनसे बहुत ही सशक्त, बहुत ही मतलब उनसे बड़े ऐसे व्यक्ति को मिले.
And ठीक है, and that just shook him up.
और वो उसको उसने पूरी तरह से हिला के रख दिया.
And he went away a much humbler man.
और बाद में बड़े विनम्रता के साथ वहाँ से वो लौट गए.
And in fact, I'm not completely sure about this, but there's a later sutta in which he appears as a bhikshu.
अभी मैं पूरी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन और बाद में सूत्र आया है कि जाओ भिक्षु के रूप में फिर बुद्ध के पास आ गए.
And this should give us some confidence.
और इससे हमें एक आत्मविश्वास निर्माण होना चाहिए.
We know that the existing social order, the oppressive social order, is very strong.
हम जानते हैं कि आज की जो समाज व्यवस्था है, जो शोषण करने वाली व्यवस्था है, बहुत ही मजबूत है.
Caste is very strong.
हाँ, जाति जो है बहुत ही मजबूत है.
Inequality is very strong.
विषमता जो है बड़ी मजबूत है.
And individually we can only do a very little to change that.
और एक व्यक्ति के रूप में इसमें परिवर्तन लाने के लिए हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं.
But we can have confidence in the Dhamma.
लेकिन हम धर्म के ऊपर विश्वास रख सकते हैं.
Yes, there was a counter revolution.
अभी यहाँ ये सही है कि प्रतिक्रांति हुई है.
But the Dhamma came back.
लेकिन धर्म फिर से वापस लौट आया.
And it will come back again and again as long as we keep it alive.
और ये जो धर्म है पुनः पुनः बार बार इस प्रकार से वापस आएगा जब तक हम इसको जीवित बनाए रखेंगे.
So our duty is to worship the Dhamma.
तो हमारा कर्तव्य ये है कि धर्म की हम पूजा करें.
Rely on the Dhamma.
धर्म के ऊपर हम निर्भर रहे.
Practice the Dhamma.
धर्म का आचरण करें.
And share the Dhamma with others.
औरों के साथ धर्म को हम बांट लें.
And then we can help to change this system.
और फिर इस व्यवस्था को तभी हम बदल सकते हैं.
We can do it here in India.
हम यहाँ भारत में ये कर सकते हैं.
Our friends are doing it in Hungary.
हमारे मित्र हंगेरी में ये कर रहे हैं.
And they've had a big effect already on so many people.
और बहुत सारे लोगों के ऊपर अभी उसका बहुत बड़ा असर वहाँ हुआ है.
The freedom, the purity of the Dhamma changes people, changes society.
तो धम्म की जो मुक्ति है, उसकी जो शुद्धता है, इससे लोगों में बड़ा परिवर्तन आता है.
And we should have confidence in what the Buddha experienced here.
और बुद्ध ने जो कुछ यह अनुभव किया है उसके ऊपर हम अपना विश्वास रख सकते हैं.
It's as if the Dhamma is a sort of power.
तो हम एक प्रकार से धम्म एक शक्ति है ऐसा देख सकते हैं.
The power of truth, you sometimes hear said.
तो ऐसा हम कुछ समय कह सकते हैं कि सत्य की ये शक्ति है.
The truth itself is powerful.
सत्य ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है.
The truth, when you present it, when you communicate it, has an effect.
जब सत्य को आप कथन करते हैं, जब आप औरों को ये बताते हैं, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है.
So we should rely on the power of the Dhamma.
तो धम्म के एक शक्ति के ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं.
So that will do for today.
तो आज के लिए इतना पर्याप्त है.
And what I suggest you do now is go to that place and see where the Buddha gave this message.
तो अब मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि अभी यहाँ से जाकर आप जहाँ बुद्ध ने ये संदेश दिया वहाँ तक हम जाके उसको देख सकते हैं.
And just remember while you're there what happened.
और वहाँ जब आप रहेंगे तो याद कीजिए कि यहाँ क्या हुआ था.
Feel the strength, the power of what the Buddha did.
और बुद्ध ने जो कुछ किया उसके जो मतलब शक्ति थी वो जो बल था उसको महसूस कीजिए.
Because of what the Buddha taught here, Samrat Ashoka was able to make India into a Buddhist land.
और जो कुछ यहाँ पर में हुआ इसी बात की वजह से सम्राट अशोक जो है उन्होंने एक बौद्ध भारत बनाया.
And because of what the Buddha did here, Baba Saheb was able to relaunch the Dhamma revolution.
और बुद्ध ने जो कुछ याद किया है इसी वजह से बाबा साहब ने फिर से धम्म क्रांति की.
So go there, reflect on what happened.
तो वहाँ जाइए और चिंतन कीजिए कि यहाँ क्या हुआ था.
And we'll spend the rest of the morning here or anywhere you want to.
तो सारी सुबह जो है हम यहाँ बिताएंगे, जहाँ भी आप जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं.
The Chinese haven't stuck to their program.
और जो चाइनीज लोग हैं वो उनके कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहे अभी.
And they're making a lot of noise.
वो बहुत सारा मतलब आवाज कर रहे हैं.
So just find somewhere which is reasonably quiet if you can.
तो जहाँ आपको बड़ी शांतिपूर्ण जगह दिखाई दे वो ढूंढने की कोशिश कीजिए.
And just reflect on these two points that I've been talking about this morning.
तो आज की सुबह जो दो मुद्दे मैं बता रहा था उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए.
And if you want, just walk round and round.
अगर आप चाहे तो इसके गोल आप ऐसा संक्रमण कर सकते हैं.
Trying to connect with the power of the Dhamma.
तो धम्म की जो शक्ति है उसके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए.
Letting the power of the Dhamma change you.
तो धम्म के शक्ति को आप में परिवर्तन लाने दीजिए.
We have to willingly allow the Dhamma to transform us.
तो हम स्वेच्छा से धम्म को हमें परिवर्तन लाने के लिए हमने आने देना चाहिए.
And we have to allow the Dhamma to transform the world around us.
और धम्म से सारे जगत में हमारे आसपास जो है उसमें परिवर्तन आने के लिए हमने उसको मौका देना चाहिए.
We have to work for Baba Saheb's Dhamma revolution.
बाबा साहब के धम्म क्रांति के लिए हमें कार्य करना है.
Which was the Buddha's Dhamma revolution.
और जो बुद्ध की धम्म क्रांति है.
No difference.
उसमें कोई फर्क नहीं है.